ओम शांति। आज का विशेष टॉपिक है माया को दूर से खदेड़ने की युक्तियां। हम सभी जानते हैं कि संसार में लोग माया को अनेक नामों से, अनेक रूपों से उसको जानते हैं। जैसे कि किसी के पास बहुत धन होता है तो कहते हैं कि उसके पास बहुत बड़ी माया है, उसको माया का नशा है, उसको माया का घमंड है, अभिमान है, तो लोग धन को माया समझ लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि धन तो एक साधन है, संपत्ति है, जो मानव जीवन में आजीविका के लिए आवश्यक है। लेकिन सांसारिक लोग धन को माया समझते हैं। इसी प्रकार से जो साधु सन्यासी हैं, जो साधना करते हैं, उनके साधना में, साधना के समय यदि वो किसी स्त्री को देख लेते हैं और उनके अंदर जो संकल्प विकल्प चलते हैं तो उस समय वो क्या कहते हैं, माया आ गई, अर्थात वो स्त्री को माया समझ लेते हैं। तो साधु संत महात्मा जो है वो स्त्री को माया कह देते हैं। लेकिन बात क्या है कि हरेक के अंदर जो बुराइयां हैं, बेकार हैं, जो अशुद्धि है, वो माया है। इसी प्रकार से साधु संत महात्मा जो है वो एक कहावत कहते हैं कि कहीं धूप कहीं छाया, ये है प्रभु की माया, अर्थात दुनिया में जो कुछ भी है वो सब माया है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। और संसार में जो मैजिक शब्द निकला है इंग्लिश का, अंग्रेजी का, वो मैजिक शब्द भी माया शब्द से ही निकला है, उसकी उत्पत्ति माया शब्द से हुई है। क्योंकि मैजिक में क्या दिखाते हैं कि जो चीज सामने नहीं है उसको वो सामने दिखा देते हैं और जो चीज सामने है उसका रूप बदल देते हैं, अर्थात रस्सी को सांप, सांप को रस्सी के रूप में वो दर्शाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक माया है, क्योंकि उसमें भ्रम है। और संसार में लोग कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं कि संसार जो है वो एक, वो भी एक माया है, क्योंकि यहां सब जैसे कि सब भ्रमित हैं, भ्रम में हैं, जो समझते हैं वो जैसे कि वो है नहीं, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। और बाबा खास करके बॉम्बे को कौन सा नाम देते हैं, माया नगरी। मायापुरी की एक मैगजीन भी निकलती है। तो संसार में लोग माया को अनेक नामों से, अनेक रूपों से जानते हैं, उसको याद करते हैं। लेकिन बाबा ने हम सभी को जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं कि माया किसे कहा जाता है, माया का क्या स्वरूप है, माया की उत्पत्ति कैसे होती है, कहां से होती है, माया की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई। तो माया जो है वो बहुत ही संसार के लिए या ब्राह्मणों के लिए एक विशेष डेंजरस क्या है, दुश्मन है, शत्रु है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय सारे संसार में माया का एक छत्र राज्य है, संसार में सर्वत्र माया ही व्याप्त है। हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का हो, सबके जीवन में माया समाई हुई है। तो माया इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है, जिसने कि सारे संसार को अपने बस में किया हुआ है। तो जो माया इतनी शक्तिशाली है, उस माया पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो उस माया पर विजय प्राप्त कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। तो बाबा ने उस माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस माया को दूर से खदेड़ने के लिए हमें अनेक प्रकार की विधियां, अनेक प्रकार के युक्तियां बताई हुई हैं, जिनको हम जीवन में अमल में लाते हैं तो हम माया को दूर से खदेड़ सकते हैं और हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, पहली विधि है कि माया को जानना, क्योंकि जब तक हम माया को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको खदेड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि माया के बहुत वैरायटी स्वरूप हैं। मोटे मोटे 5 विकार, उसके अलावा सूक्ष्म विकार और साथ साथ कुछ रॉयल स्वरूप भी हैं। तो माया हमारे जीवन में या हमारे सामने कब और किस रूप में आती है उसको जानना अति आवश्यक है। जैसे बाबा ने आज के मुरली में कहा कि माया को आप आवाहन करते हैं। आवाहन कैसे करते हैं? अपने सामान की सीट को छोड़ देते हैं। तो आप अपने पोजीशन को छोड़ते हैं तो क्या होता है, माया उस समय आपका अपोजिशन करती है और उसकी बहुत बड़ी सेना है। तो जब माया की इतनी बड़ी सेना हमारे सामने होगी या जिसके सामने होगी, उसकी स्थिति क्या होगी? उसके उमंग उत्साह का जो प्रेशर है वो ढीला हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि पहले माया को जानो कि माया क्या है। दूसरी बात है कि बाबा ने कहा कि माया जो है वो एक कमजोरी है। माया किसी व्यक्ति का रूप नहीं है, माया किसी व्यक्ति के स्वरूप में नहीं है, ना वो कोई स्त्री के रूप में है ना पुरुष के रूप में है। माया आपकी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी क्या है? जो आत्मा के मौलिक गुण हैं, उन मौलिक गुणों की कमी, उसका अभाव ही वो माया है, वो कमजोरी है। तीसरी बात है कि माया अर्थात अंधकार, अज्ञान, क्योंकि जहां अंधकार है वहीं माया है, जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां माया नहीं आ सकती। तो पहली बात है कि स्वयं की पहले माया को जानना है कि माया अर्थात क्या है, और माया हमारे जीवन में कैसे कैसे कब आती है, कहां से आती है, उस बात को जानना जरूरी है। जब तक हम उस बात को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम माया को खदेड़ नहीं सकते, क्योंकि माया हमारे साथ ऐसे घुल मिल के चलती है जैसे दूध में चीनी को डाल देते हैं, शुगर, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें माया को जानना जरूरी है। तो पहली विधि है कि माया को जानना, और दूसरी युक्ति है कि माया जब जीवन में आती है और आकर के हमारे से जो बहुत सारे गलत कार्य कराती है, उससे जो हमें नुकसान होता है उस नुकसान को जानना, क्योंकि जब तक हम उस नुकसान को नहीं जानेंगे तब तक हम माया को दूर नहीं भगा सकते हैं। तो जब माया हमारे जीवन में आती है, किसी के जीवन में माया आती है, उस समय हमारे को क्या क्या नुकसान होता है? डिस्टर्बेंस होता है, स्थिति गिर जाती है, माया हमारे समय को बर्बाद कर देती है, की कमाई को चट कर देती है, बुद्धि को खंडित कर देती है, बाप के श्रीमत का उल्लंघन कराती है, विकर्म हो जाते हैं, हमारे चाल चलन व्यवहार सब बिगड़ जाता है, विकर्मों का खाता बढ़ जाता है। तो माया जो है वो हमारे जो कर्म कराती है उससे क्या क्या लॉस होता है हमको, उसके बारे में जानना जरूरी है। जब हम उसके बारे में जानेंगे तभी हम माया को खदेड़ सकेंगे। और तीसरी बात है कि स्वयं को जानना, अपनी पोजीशन को जानना और अपने कर्तव्य को जानना, कि वर्तमान समय हमारी पोजीशन क्या है, वर्तमान समय हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो बाबा ने हमें वर्तमान समय संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ पोजीशन दी हुई है। कौन सी पोजीशन दी हुई है? मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर क्रिएटर, सारे संसार के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। जबकि हम वर्तमान समय इतनी ऊंची स्थिति पर है, इतनी ऊंचे स्टेटस मतलब पोजीशन पर हैं, तो यदि हम इसको ध्यान में रखते हैं, उसको याद रखते हैं, तो फिर हमारे पास वो अवसर ही कहाँ है कि जो हम माया को अपने पास आने दें, क्योंकि हमारे पास वो समय कहाँ है। तो तीसरी बात है कि माया को खदेड़ने के लिए अपने श्रेष्ठ पोजीशन में रहना, अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य की स्मृति में रहना। यदि अपने श्रेष्ठ कर्तव्य की स्मृति में है, कर्तव्य में हम इन्वॉल्व हैं, तो हमारे सामने माया आने की हिम्मत नहीं कर सकती, अर्थात हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं। चौथी बात है कि ब्राह्मण जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्लियर हो और दृढ़ हो, क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा और लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ नहीं होंगे, तब तक माया के आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। जैसे बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की, तो यज्ञ की स्थापना के साथ साथ बाबा ने सभी को लक्ष्य दिया कि आपको मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन में जो बाबा हमें अनेक प्रकार के लक्ष्य देते हैं, जैसे कि इस साल बाबा ने हम सभी को लक्ष्य दिया हुआ है। कौन सा लक्ष्य दिया है? समाप्ति वर्ष मनाओ। तो बाबा जो बार बार मुरलियों में हमें लक्ष्य देते हैं, उस लक्ष्य के प्रति यदि हम दृढ़ होंगे, सजग होंगे, लक्ष्य क्लियर होगा, तो हम माया को दूर से भगा सकेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो उस लक्ष्य को हासिल करने में ही हमें अपने समय को, अपनी एनर्जी को लगाना है। तो चौथी बात है कि हमारा लक्ष्य क्लियर हो और दृढ़ हो। पांचवी बात है कि ज्ञान और योग की, ज्ञान की वास और धूप सदा जलती रहे। बाबा ने जो हमें अथाह ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की वास और धूप सदा जलती रहे। सारा दिन बुद्धि में कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट्स चिंतन में चलती रहे, स्मृति में इमर्ज रहे। यदि सारा दिन ज्ञान और योग की धूप जलती रहेगी, तो माया हमारे सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि माया को इससे एलर्जी है। तो माया को जिस चीज से एलर्जी है, यदि हम उसको कायम रखते हैं, उसको हम जला के रखते हैं, तो माया नहीं आ सकती है। जैसे किसी को अगरबत्ती से एलर्जी होती है, कई प्रकार के परफ्यूम होते हैं, सेंट होते हैं, उससे लोगों को एलर्जी होती है, तो सुताई उससे दूर रहते हैं। इसी प्रकार से हमें जानना है कि माया को ज्ञान की वास और धूप से एलर्जी है। तो सारा दिन हम ज्ञान की वास धूप जला कर रखें, अर्थात सारा दिन जो बाबा हमें रोज मुरलियों में ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं, उस ज्ञान की पॉइंट्स को हम याद रखें, उसको बार बार रिवाइज करें, उसके चिंतन में रहें, मनन में रहें, तो इसके माध्यम से हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं। और अगली पॉइंट है कि योग की ज्वाला जलाकर रखें, योग की ज्वाला को जलाकर रखें। जैसे शेर जो एक हिंसक प्राणी है, लेकिन वो हिंसक प्राणी अग्नि से हमेशा डरता है, जहां अग्नि होगी वहां पर वो नहीं आ सकता है। तो माया जो हम सभी के लिए, संसार के लिए जो हिंसक है शेर के समान, उसको दूर भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग की ज्वाला को हमेशा जलाकर रखना होगा। तो योग की ज्वाला के लिए, योग की ज्वाला हमेशा जलती रहे और प्रचंड रूप में, उसके लिए 10 कौन कौन सी बातें जिनको अमल में लाएंगे तो हमारी योग की ज्वाला सदा जलती रहेगी। वो 10 बातें कौन कौन सी होंगी, सभी सुनाएंगे एक एक पॉइंट को। लास्ट पॉइंट, 10वीं पॉइंट, धुन लगा कर रखेंगे तो माया, तो क्या होगा, योग की ज्वाला सदा जलती रहेगी। कौन सी धुन? आप घर जाना है और सबको साथ लेकर के भी जाना है। और दूसरी पॉइंट, ब्रेक पावरफुल हो। यदि हमारा ब्रेक पावरफुल होगा तो हम बीच बीच में जो जब हम किसी कार में इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय हम उस कार को स्टॉप करके अपने योग की ज्वाला को बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात, पावर टू टर्न, मोड़ने की शक्ति। क्योंकि जब हम बहुत बिजी होते हैं उस समय हमारे संकल्प बहुत फास्ट चल रहे होते हैं, उस समय यदि हमारे पास मोड़ने की शक्ति होगी तो हम मोड़ने की शक्ति से अपने संकल्पों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी बुद्धि को एकाग्र भी कर सकते हैं, जिससे हमारे योग की ज्वाला बढ़ती रहेगी। चौथी बात, समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति को भी हमें यूज करना है, जिसके माध्यम से हमारे योग की ज्वाला बढ़ेगी। पहले पॉइंट कौन से थे? वो दसवीं पॉइंट है। पहले पॉइंट एकाग्रता। तो पहले पॉइंट कौन से थे? एकाग्रता। तो जितनी हमारी एकाग्रता होगी उतना ही योग की ज्वाला बढ़केगी। छठवीं पॉइंट, पांचवी हो गई, पावर टू पैकअप। अगली पॉइंट है अटेंशन। किस चीज का अटेंशन? माया तो नहीं आ रही, अर्थात बार बार हमें अटेंशन देना है। यदि हमारा अटेंशन होगा तो उससे हमारी योग की ज्वाला बढ़ती रहेगी। और अगली पॉइंट, प्योरिटी, पवित्रता। जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारी एकाग्रता होगी और उतना अच्छा ही हमारा योग का चार्ट होगा, योग की ज्वाला बढ़ेगी। अगली पॉइंट, स्पीड। हमारे पुरुषार्थ की स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, माया से फास्ट हमारी स्पीड चाहिए, क्योंकि माया की स्पीड भी इस समय बहुत फास्ट है। तो हमारी स्पीड, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड उससे फास्ट होगी तो उससे हमारा योग पावरफुल बनेगा। और लास्ट पॉइंट, लिंक। लिंक हमेशा अटूट हो। किसके साथ? एक बाप के साथ, समर्थ बाप के साथ। तो ये पॉइंट अगर हमारे पुरुषार्थ में होंगे तो इससे हमारे एक नेक्स्ट पॉइंट है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे? देह से डिटैचमेंट, देह के संबंधों से, देहिक पदार्थों से। तो जितना इससे हमारा हम न्यारे रहेंगे, मन बुद्धि उनसे न्यारी रहेगी, उतना ही हम प्रभु के प्यारे बन सकेंगे और हमारे योग की ज्वाला उससे बढ़ती रहेगी। तो ये सारी बातें हैं कि इससे हम अपने योग की ज्वाला को बढ़ा सकते हैं। और जहां योग की ज्वाला है वहां माया नहीं आ सकती, अर्थात हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। अगली पॉइंट है कि माया का जो रसद और पानी है उसको बंद करना, उसका खाना पानी। क्योंकि जब तक हम उसको वो खाना पूर्ति करते हैं तब तक माया के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो माया के रसद पानी कौन कौन से हैं? पहले उसको हम निमंत्रण देते हैं। कैसे, क्यों, क्या, जो अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अर्थात हम माया का आह्वान करते हैं। फिर बाद में हम दरवाजा खुला रखते हैं और क्या कहेंगे, वो अलग पॉइंट है। और क्या करते हैं कि जो नेगेटिविटी है पढ़ने के रूप में, देखने के रूप में, खाने के रूप में, जो अनेक प्रकार की नेगेटिविटी है जिसको कहते हैं कि अशुद्धि, देखने की, सुनने की, यदि हमें उसमें इंटरेस्ट है तो क्या कहेंगे कि ये सब माया का रसद पानी है। उसके माध्यम से माया शक्तिशाली होती है और हमारे पर अटैक कर सकती है। तो उन सबको बंद करना है, जो भी ऐसी इविल जो भी ऐसी ईविल बातें हैं देखने की सुनने की, चाहे कोई वीडियो है या कोई साहित्य है, कोई सुनने की बातें हैं, उन सबको हमें बंद करना पड़ेगा। जब उन सबको हम बंद कर देंगे तो माया उससे कमजोर बनेगी और उसको हम दूर से ही खदेड़ सकते हैं। इसके अलावा डबल लॉक, तो बाबा ने कहा कि आप अपने जीवन में याद और सेवा का ये डबल लॉक लगाकर रखेंगे तो माया आपके सामने नहीं आ सकती है। ये दोनों ही लॉक चाहिए। यदि हम केवल याद का लक्ष्य रख करके याद में बैठते हैं तो भी माया के आने के चांसेस हैं, क्योंकि पहला डबल लॉक है याद और सेवा का, दूसरा डबल लॉक है चेक और चेंज। तो पहला डबल अटेंशन और चेकिंग, तो बाबा ने कहा कि ये आपके पास दोनों ही लॉक लगे रहने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर आप एक लॉक को भी ढीला करेंगे तो माया के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि आप सेवा में बिजी हैं और आपका याद का चार्ट ठीक नहीं है, आप योग युक्त होकर सेवा नहीं कर रहे हैं, तो सेवा में आने के माया के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि सेवा में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, टकराव की बातें होती है, मन मिटाव भी होता है, आपस में मेल मिलाप की बातें होती हैं। तो यदि उस समय हम योग युक्त होकर के सेवा में नहीं है तो उसके सेवा के माध्यम से भी माया आ सकती है। और यदि हम सिर्फ याद में ही रहने का लक्ष्य रखे हुए हैं तो भी उसमें माया आ सकती है, क्योंकि हम याद में कब तक रह सकते हैं, सारा समय तो मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। तो इसलिए याद और सेवा दोनों का डबल लॉक लगा के रखना है। तो यदि ये दोनों डबल लॉक लगे होंगे तो उसके माध्यम से माया को हम दूर से ही खदेड़ सकते हैं। अगली पॉइंट है कि साक्षीपन का टावर, उस पर हम बीच बीच में जा करके बैठ करके अपने आप को देखें या माया को देखें। जैसे बड़े बड़े शहरों में या कई स्थानों पर ऊंचे टावर होते हैं सिक्योरिटी के लिए, जहां से उस स्थान की निगरानी करते हैं कि यहां वहां कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटे या कोई भी असामाजिक तत्व हैं वो कोई भी गलत कार्य न कर सके। तो इसी प्रकार से माया की निगरानी के लिए हमें कौन सा टावर चाहिए? साक्षीपन की स्थिति का। तो साक्षीपन की स्थिति में बीच बीच में हम जा करके वहां से निगरानी करें, स्वयं के बारे में भी और माया के बारे में भी, कि हमारे इर्द गिर्द कहीं से माया किसी रूप में कोई अटैक तो नहीं कर रही है। यदि हम बार बार उस पर जाकर के ये चेकिंग करेंगे, ध्यान देंगे, तो उससे भी हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार अलर्ट रहे। बाबा ने कहा ये दो चौकीदार, जो दो पहरेदार हैं, ये हमेशा अलर्ट रहने चाहिए। कौन से पहरेदार? अटेंशन और चेकिंग। यदि ये दोनों पहरेदार अलर्ट हैं तो उससे भी हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। दूसरी बात है, अगली विधि है कि सुदर्शन चक्र बीच बीच में उसको घुमाते रहें, चलाते रहें, क्योंकि सुदर्शन चक्र एक ऐसा शस्त्र है जो जिस पर हम उसका प्रयोग करते हैं उसका काम क्या है, वो क्या करता है, उसका काम पूरा ही कर देता है। उसको मालूम है कि सामने वाले का गला कहाँ है, वो उसका सामने वाले का गला ही काटता है। इसलिए माया के गले को काटने के लिए या माया को दूर से भगाने के लिए सुदर्शन चक्र का हमें बार बार दिन में प्रयोग करते रहना है। तो जितना हम सुदर्शन चक्र को यूज करते हैं उतना हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। अगली विधि है कि जो बाबा ने हमें अनेक प्रकार के समान रूपी शस्त्र दिए हुए हैं, उन समान रूपी अस्त्र शस्त्रों को बीच बीच में उसका प्रयोग करते रहें, उसको यूज करते रहें, उन समान रूपी शस्त्रों से सदा लैस रहें और उसका उपयोग करते रहें, उसको यूज करते रहें। जैसे अनेक प्रकार के शस्त्र होते हैं, उनको गवर्नमेंट पहले उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी दिनचर्या में, अपने कर्म क्षेत्र पर, सेवाओं में भिन्न भिन्न समान रूप जो शस्त्र हैं, उन शस्त्र को उनका उपयोग करते रहना है। तो जितना हम उन शस्त्रों का उपयोग करते रहेंगे, अर्थात हम उस समान में रहेंगे, वो शक्तिशाली स्टेज में रहेंगे, तो उसके माध्यम से हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं। और अगला मेथड, अगली विधि है कि मन मनाभव के मंत्र को जाप करते रहें, उसको यूज करते रहें, क्योंकि जो मंत्र होता है उसमें बहुत बड़ी पावर होती है। मंत्र में एक एनर्जी होती है। जैसे दुनिया में अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, उन मंत्र के माध्यम से लोग अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो जो मन मनाभव का मंत्र है, उस मंत्र को आप जहां भी डालेंगे, उसमें इतनी विस्फोटक पावर है, शक्ति है, कि वो जहां वो मंत्र पड़ेगा वहां पर माया को नेस्तनाभूत कर देगी। तो मन मनाभव के मंत्र को भी उसका प्रयोग करते रहें, तो उसके माध्यम से माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं। और अगली एक विधि है कि सदा बाप की छत्र छाया में रहना, क्योंकि बाप की छत्र छाया में सर्व शक्तियां समाई हुई है। तो जहां सर्व शक्तियों की कवच है, सर्व शक्तियों की छत्र छाया है, वहां पर माया के आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, चांसेस नहीं है। जितना हम बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे, उतना हम माया को दूर से ही भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। ये भी एक विधि है। और एक दूसरी विधि है कि मर्यादा की लकीर के अंदर स्वयं को रखना, क्योंकि मर्यादा की जो लकीर है, जो लक्ष्मण रेखा है, उस रेखा में भी एक करंट है। तो बाबा ने जो हमें मर्यादा की लकीर दी हुई है, उस लकीर के अंदर उसमें करंट भर के दिया, उसमें बहुत बड़ी करंट समाई हुई है। जैसे रामायण में दिखाया हुआ है कि सीता जी जब जंगल में वनवास में थी, और जब रावण उस समय उसके अपहरण के लिए आया, तो लक्ष्मण ने उस समय सीता को लक्ष्मण रेखा खींच के उनको आदेश दिया था कि आपको इस रेखा से बाहर नहीं निकलना है। इस रेखा में इतनी पावर है जिसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बाबा ने हम सभी को जो श्रीमत रूपी या मर्यादाओं की जो रेखा जो दी हुई है, उस रेखा में इतनी बड़ी शक्ति भरी हुई है जो उस रेखा को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वयं को उस रेखा के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से भी हम माया को दूर से खदेड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बाबा हमें रोज की मुरली सुनाते हैं, ये मुरली भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुराक है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमें रोज की मुरली में भी पूरा पूरा अटेंशन देना है। यदि हमें माया को दूर से ही खदेड़ना है, तो हमें रोज की साकार मुरली या अव्यक्त मुरली है, उस पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। उस मुरली से रोज उसमें नए नए भिन्न भिन्न जो उसमें आकर्षक प्वाइंट होती है, उन प्वाइंट्स को निकाल करके उसके हम मनन चिंतन में बिजी रहते हैं, तो उसके माध्यम से हम माया को दूर से ही खदेड़ सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको हम यदि जीवन में यूज करते हैं, तो माया जो इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है, जिसने सारी दुनिया को अपने वश में किया हुआ है, उस माया को हम दूर से खदेड़ सकते हैं और हम माया जीत बन सकते हैं। ओम शांति।